समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। हाय शगुन।
हेलो
शगुन। देखो, घड़ी 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 को देखते हुए घड़ी घड़ी मन में एक ही बात आती है
जी।
हर दिन के ये 86,400 पल यानी हर दिन के 24 घंटे यार बहुत कीमती है और हर पल का आनंद लीजिए, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग खुश रहते हैं वो काम करते हुए 13% ज्यादा असरदार होते हैं और नाखुशी के माहौल के कारण दुनिया को 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। तो मुस्कुराइए और हम भी मुस्कुरा के आज की परिक्रमा पे चलते हैं, क्यों शगुन?
एग्जैक्टली। हेलो एंड गुड आफ्टरनून। ऑन दिस वेरी नोट यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM, द प्रोग्राम वेयर वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर, एंड ऑल ऑफ दिस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। So turn up the volume of the radio, right? So we begin with the news headlines first. 5 army soldiers killed in a flash flood during tank warfare exercises in Ladakh. Defense Minister Rajnath Singh expresses grief.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट, CSIR, यूजीसी नेट, NCET परीक्षाओं के लिए नई तारीखों की घोषणा की।
Annual pilgrimage to Holy Cave Shrine of Sri Amarnath Ji commences from both Pahalgam and Baltal routes. Prime Minister Narendra Modi greets yatris. Southwest monsoon extends further into northwest, central and east India.
और क्रिकेट में आज शाम बारबाडोस में T20 विश्व कप फाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about International Day of the Tropics and National Statistics Day.
Shagun, देखो, इक्वेटर के आसपास के क्षेत्रों यानी ट्रॉपिक्स के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिक्स दिवस मनाया जाता है।
और
देखो, दुनिया की लगभग 40% सतह पर दुनिया की 80% जैव विविधता संजोई ट्रॉपिकल क्षेत्र हमारे भविष्य का आधार है।
40%
बिल्कुल
right.
और ट्रॉपिक्स में बहुत ज्यादा जैव विविधता है, लेकिन इन क्षेत्रों में जैव विविधता को दुनिया भर में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। इन क्षेत्रों में दुनिया के नवीकरणीय जल संसाधनों का लगभग आधा हिस्सा होते हुए भी इनकी आधी आबादी जल संकट के कागार पर है।
हाफ ऑफ इट, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन।
बिल्कुल बिल्कुल
राइट। एंड चारू, एज यू टोल्ड, दिस डे द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स व्हिच इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे जून 29, इट सेलिब्रेट्स द एक्स्ट्रॉर्डिनरी डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिक्स। दे आर वेरी डाइवर्स राइट, हाईलाइटिंग द यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज द नेशंस ऑफ द ट्रॉपिक्स दे स्पेसिफिकली face, and it provides the very opportunity to take stock of the progress across the tropics and to share tropical stories and expertise and to acknowledge the diversity and the potential, the vast potential of this particular region.
Bilkul. इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, शहरीकरण और जनसांख्यिकी परिवर्तन जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है
right.
और इस सन 2050 तक इन क्षेत्रों में दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा और दुनिया के 2/3 बच्चे मौजूद होंगे hmm. ज्यादा गरीबी के चलते यहां ज्यादा लोग कुपोषण का शिकार हैं।
By the year 2050,
right?
The tropical nations have made significant progress but face a variety of challenges that demand our focused attention across a range of development indicators and data in order to achieve sustainable development. This is said and quoted by the United Nations. Right? Yes. And as you told us, the region by 2050 will host most of the world's people and 2/3 of its children, and the proportion of the urban population living in slum conditions, it is higher in the tropics than in the rest of the world, this very study stated.
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के सामने आने वाले विशिष्ट चुनौतियों, दुनिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों के दूरगामी प्रभावों और सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने और महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओशन कटिबंधीय दिवस को नामित किया गया था। ओशन कटिबंधीय क्षेत्र के देश सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका निभाएंगे।
And now, Charu, for our listeners, let's talk about the background of this particular day. The inaugural State of the Tropics report, it was launched on 29 June in the year 2014 as the culmination of a collaboration between 12 leading tropical research institutions. And this report offers a unique perspective on this increasingly important region, very important region of the tropics. And marking the anniversary of the report's launch, the United Nations General Assembly adopted a resolution in the year 2016, which declared that 29 June of each year is to be observed as the International Day of the Tropics.
भारत सहित कई देश शगुन मतलब ये देखिए कि ओशन कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं और ये क्षेत्र पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए आइए देखें क्यों। बिल्कुल ओशन कटिबंधीय जो क्षेत्र है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र है और यहाँ पौधों और जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। और यहाँ क्या है कि ओशन कटिबंधीय वन वातावरण को ठंडा रखने और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में बहुत भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में जैसे खाद्य पदार्थ दवाइयां और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का एक प्रमुख स्रोत है।
एंड चारू द ट्रॉपिक्स दे बोस्ट अप्रोक्सीमेटली नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर्स दे बोस्ट अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट बाय एरिया एंड आर होम टू 99% ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज राइट डिस्पाइट होल्डिंग जस्ट ओवर हाफ विच इज 54% of the world's renewable water resources, the tropics face the challenge of nearly half their population being considered vulnerable to water stress. Water shortage, basically.
Bilkul.
While the tropics exhibit greater biodiversity, it is important to note that the loss of biodiversity is also more pronounced in this region compared to the other regions, the rest of the world.
But ek choti si baat hai.
Right.
Ki कई खतरों का जो हम सामना कर रहे हैं जिनमें बहुत खास बात है वो है पेड़ों को काटने से वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है बिल्कुल हाँ या फिर बढ़ते तापमान और बढ़ते मौसम
क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इट डायरेक्टली लीड्स टू दैट राइट
बिल्कुल और जो हमें करना चाहिए और हम कर सकते हैं भाई कागज की बचत करें पेड़ लगाएं कम बिजली का उपयोग करें और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने की तारीखें खोजें।
एंड चारू दिस वेरी डे द इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स इट वाज एक्चुअली डेजिग्नेटेड टू रेज अवेयरनेस टू दीज स्पेसिफिक चैलेंजेस दैट यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दैट एंड ऑल्सो द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द ट्रॉपिकल एरियाज द फार रीचिंग इम्प्लीकेशन ऑफ द इश्यूज अफेक्टिंग द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल जोन एंड द नीड एट ऑल लेवल्स टू रेज अवेयरनेस एंड टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट रोल द कंट्रीज इन द ट्रॉपिक्स विल प्ले इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच is what is needed. It is need of the hour, right? Sustainable development goals. The United Nations says this. And this day celebrates and provides an opportunity to take stock of the progress across the tropics.
बहुत एक छोटी सी बात
जी
अपने परिवार और दोस्तों को इस बारे में यानी कि ऊष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महत्व के बारे में बताएं जिससे एक अलर्टनेस आए
वी शुड बी अलर्ट अबाउट इट
तो फिर अब चलते हैं दूसरी तरफ
व्हिच इज
यस
नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे
बिल्कुल
दिस इज द 18th स्टैटिस्टिक्स डे व्हिच इज बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे दैट इज 29th ऑफ जून
जी
एंड
यू नो रोजमर्रा की जिंदगी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने के लिए हर साल ये आज मनाया जाता है और पहली बार ये दिवस 2006 में मनाया गया था
राइट
जैसा कि
टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द स्टैटिस्टिशियंस इन इंडिया
राइट
पर्टिकुलरली ऑनरिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन लेट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस
राइट और इस साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की थीम है यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग
यूज ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग
यस यस और यानी कि निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग तो पर ये क्यों जरूरी है शगुन देखो सोच के देखो अच्छे निर्णयों से अच्छी नीतियां बनती हैं और अच्छी नीतियों से बनता है देश का भविष्य तो हुआ ना ये जरूरी
वेरी इम्पोर्टेंट
एक पक्ष और भी है अच्छा फैसला कभी भी अंधेरे में रहकर नहीं लिया जा सकता।
ऑब्वियसली नॉट।
उसके लिए चाहिए पुख्ता आधार। जब आप एक साबित की हुई बात से सोचना शुरू करते हैं और जब आप तथ्यों और साक्ष्यों की रोशनी में फैसले लेते हैं तो आप हर काम से देश के काम आते हैं। और आज तो बिग डेटा और एआई आपके आंकड़ों को पलक झपकते समझकर उनसे निष्कर्ष निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं।
वेरी हेल्पफुल टूल्स अवेलेबल।
बिल्कुल शगुन, देखो आंका कैसे भी जाए, सच यही है कि दशकों के डेटा में छिपे पैटर्न और सांख्यिकी की आधिकारिक जानकारी की गहरी समझ कुछ बेहतरीन परिणाम ला सकते हैं, क्योंकि अच्छा फैसला साक्ष्य से उभरकर सच्चा परिवर्तन लाता है। तो आप भी अपने जीवन के किसी पक्ष में की सांख्यिकी से जांच कर लीजिए, क्या पता दशा और दिशा दोनों सुधर जाए।
एग्जैक्टली। एंड लिसनर्स, टुडे द प्रोग्राम टू मार्क दिस डे वाज सेलिब्रेटेड इन दिल्ली, व्हिच वाज अटेंडेड बाय चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पानगरिया। स्पीकिंग ऑन द ओकेजन ही सेड दैट द चैलेंज ऑफ द करंट टाइम्स इज टू प्रोड्यूस ऑथेंटिक, robust and accurate statistics to cope with the huge demand for information universally. Actually, there is a huge demand for yes. information and data which is accessible through digital and other channels. Data is pretty easily available now. And he also advocated that all young statisticians must be encouraged. This is especially for those young statisticians who are, you know, either planning or aspiring to be a statistician or take this topic up as their study. They must be encouraged to lead the nation and the world with their contribution to theory and apply statistical methods, which will be a befitting tribute to the memory of P.C. Mahalanobis, whom we are remembering today. Right, and he also expressed confidence that India will contribute with its commendable work in data-driven statistical research and development activities for innovation in various fields like medicine, academics, business, information technology and economics. He also said that the need of the hour is to ensure the availability of accurate data. Right?
Yeah.
And also talking about the Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation, Saurabh Garg. He said that on a regular basis, the ministry is looking at what kind of systematic improvements can be made, adding that whether it should be timely publication of data, employing IT tools, and whether to switch over to computer-assisted interview system by moving away from conventional pen and paper survey. And statistics, as we're talking about it, they are very important in our daily life as well, right? Because they help, as you were talking about, nirnay lene wali cheez se baat kar rahi thi. They help us to make informed decisions based on the data which is available, to analyze the trends and draw conclusions from the information. And from medical research to sports analysis, they are used to understand the world around us and make better decisions.
तो शगुन, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो फिर हम चलते हैं दक्षिण कश्मीर की तरफ। दक्षिण कश्मीर में हिमालय की गोद में बाबा श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में प्राकृतिक हिमलिंगम के दर्शन करने के लिए वार्षिक यात्रा आज यात्रा के बालटाल और पहलगाम दोनों आधार शिविरों से आरंभ हो गई। वहीं समूचे जम्मू संभाग में पिछले कई दिनों से भक्ति में माहौल बना हुआ है। चारों तरफ बम बम भोले के जयकारे और देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले कल यानी 28 जून को जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास आधार शिविर से इस वर्ष की यात्रा का पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ।
श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था शुक्रवार तड़के जम्मू से रवाना हो गया था। श्रद्धालुओं को विदा करने के पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर स्थित यात्री निवास आधार शिविर में पूजा की और श्रद्धालुओं को झंडी दिखाकर रवाना किया।
फाइनली आ चुके फ्लैग ऑफ करने मनोज सिन्हा एलडी साहब।
छोटी बड़ी कुल 231 गाड़ियों के काफिले में सवार 4603 श्रद्धालुओं में 3631 मर्द, 711 महिलाएं, 237 साधु, 15 साध्वियां और 9 बच्चे शामिल थे, जो भोले शंकर के जय जय घोष और बम बम भोले के नारे लगाते घाटी के लिए रवाना हुए। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने सकुशल और सफल यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। सुरक्षा की बात करते हुए एलजी ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में यात्रा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं और इस बार भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी जरूरी इंतजाम कर रखे हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बलों की तैनाती को भी बढ़ाया गया है और इसके साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से यात्री वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दक्षिण कश्मीर में हिमालय की गोद में वाका श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शनों के लिए वार्षिक यात्रा आज औपचारिक तौर से कश्मीर घाटी में दोनों आधार शिविरों बालटाल और पहलगाम से शुरू हो गई। वहीं जम्मू से आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में भगवती नगर आधार शिविर से दूसरा जत्था 4029 श्रद्धालुओं को लेकर घाटी के लिए रवाना हुआ, जिसमें 2935 पुरुष, 780 महिलाएं, 21 बच्चे, 231 साधु और 62 साधुयां शामिल हैं। इनमें से 1850 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए जबकि 2179 श्रद्धालु पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए हैं। इसके साथ ही जम्मू यात्री निवास आधार शिविर से अमरनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या अब तक 8632 हो गई है। परिक्रमा के लिए जम्मू से मैं जगमोहन शर्मा।
तो शगुन, अब कहां लेके जाओगी?
चारू, नाउ वील टेक आर लिसनर्स टू कर्नाटका बेंगलुरु, वेयर कर्नाटका आईटी एंड बीटी मिनिस्टर प्रियांक खड़गे ही मेट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन विद अ विश लिस्ट। Priyank Kharge wished for central support to establish a global financial and IT hub on the lines of GIFT City in Gujarat. More from our correspondent.
Karnataka ITBT Minister Priyank Kharge held a meeting with Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday and proposed setting up of dedicated central business district in Karnataka on the lines of GIFT City or International Finance Tech City being developed in Gujarat. The proposed project to be replicated in Karnataka will act as a global financial and IT hub. The state IT minister told Union Minister that Karnataka has a vibrant economy with ITBT, aerospace, automotive, textiles and heavy industries forming the cream of the investment pie. He pointed out that the state is strategically located and is well positioned to replicate a similar business hub in its bosom. Bengaluru, he noted, is a tech hub and Silicon Valley of India. It has dominance in semiconductor and electronic sector, fintech space, enterprise tech, e-commerce and edtech as emerging fields of interest. The state is third in the country in terms of electronic exports at $4.5 billion. The state minister said that Adi Narayan Hosahalli in Bengaluru Rural District and Vasanta Narsapura in Tumkuru District are identified for IT and finance hubs, and Union Minister was requested to fast-track all the approvals. Sudhindra for Parikrama from Bengaluru.
Shagun, Himachal Pradesh ek shanti priya aur behtareen paryatan wala rajya hai.
Very beautiful.
Jahan paryatan kshetra mein apar sambhavnaen maujood hain aur yahan abhi bhi kai aise anchhuye paryatan sthal hain jise viksit kar pradesh mein paryatakon ko aakarshit karne ke prayas sarkar kar rahi hai.
Now I'm curious to know.
इसी के तहत प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और इको टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
राज्य सरकार ने आने वाले समय में प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटन की दृष्टि से आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ कर रही है। राज्य सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली के तहत पर्यटन अधोसंरचना के सतत विकास के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार धर्मशाला को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए यहां अधोसंरचना विकास पर बल दे रही है। पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए प्रदेश के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्यटन संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों शिमला, कुफरी, मनाली, धर्मशाला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है ताकि यहां आने वाले पर्यटक ग्रामीण परिवेश में प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव ले सकें। ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत अंदरौली और शिमला के निकट तत्तापानी जैसे स्थलों को जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए विकसित करने के प्रयास तेज किए गए हैं। इसी प्रकार साहसिक पर्यटन की दृष्टि से भी प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित की जा रही हैं, जिसके चलते शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों में पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग जैसी गतिविधियां अब पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनती जा रही हैं। इसी कड़ी में अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से अब लाहौल स्पीति जिला की अनछुई प्राकृतिक सुंदरता देश विदेश के पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण बनकर उभरी है। निश्चित तौर पर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम बेहतर पर्यटन के जरिए राज्य और इसके निवासियों के लिए आय के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही पर्यटन राज्य के रूप में हिमाचल को एक नई पहचान दिलाएंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से रितेश कपूर।
Now listeners, the monsoon has arrived. How are you feeling about the weather?
Oh, बहुत मजा आ रहा है।
My God, इतनी सारी गर्मी से कुछ तो निजात मिली,
right? Respite from the excessive heat which was there from couple of two months basically.
बिल्कुल।
And let's talk about what the IMD has to say. The IMD has said that southwest monsoon has further advanced into some parts of Rajasthan, western Uttar Pradesh, Haryana, entire Delhi. Remaining parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Jharkhand, Bihar, some parts of eastern Uttar Pradesh and remaining parts of Uttarakhand. And the IMD said that very heavy rainfall is expected in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Chandigarh, Delhi, Uttar Pradesh, eastern Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today only. Right? Heavy rainfalls are there. Heavy rainfall can also occur in Chhattisgarh, Gujarat, coastal Karnataka, sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and also Arunachal Pradesh.
Bilkul.
Right? Now, talking about the National Testing Agency, it has made an announcement about the fresh dates for cancelled and postponed examinations. In a notification issued yesterday, the NTA said that UGC NET June 2024 examination will now be held between 21st of August and 4th of September. The University Grants Commission National Eligibility Test, UGC NET, was cancelled a day after being conducted on 18th of this month as the Education Ministry received inputs that the integrity of the exam was compromised. The UGC NET is a test to determine the eligibility for the award of Junior Research Fellowship for appointment of assistant professors and admission to PhD courses. Joint CSIR UGC NET June 2024 examination, it was postponed as a preemptive measure, will now be held from 25th to 27th of July. The Council for Scientific and Industrial Research, CSIR UGC NET, is accepted for PhD admissions in Chemical Sciences, Earth, Ocean and Planetary Sciences, Life Sciences, Mathematical Sciences and Physical Sciences. The National Common Entrance Test, NCT, for admission to the four-year integrated teacher education program, ITEP, it was also postponed. It will now be conducted on 10th of July. The NTA said that the All India Ayush Postgraduate Entrance Test 2024 will be held as per its actual schedule on 6th of next month. The NTA has advised the candidates to visit its official website, which is www.nta.ac.in for any further information.
कुछ ही घंटे रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में। हम लोग कितना भी बिजी हो लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां ध्यान पूरा हट जाता है, उसी तरफ चला जाता है।
वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच टुडे।
पर ये जो इंतजार है ना, ये बिल्कुल नहीं खलेगा जब रोहित शर्मा इस विश्व कप की ट्रॉफी उठाएंगे और हम सबका कई सालों से चला आ रहा इंतजार खत्म करेंगे, इंतजार ICC विश्व कप ट्रॉफी का। तो अब बिना इंतजार किए रुक करते हैं खेल खबरों का।
राइट, इन क्रिकेट टुडे इंडिया इज, एज चारू इज टेलिंग अस, इंडिया विल लॉक हॉर्न्स विद साउथ अफ्रीका इन द फाइनल ऑफ मेंस T20 वर्ल्ड कप एट बारबाडोस। द मैच विल स्टार्ट, एंड नोट दिस टाइमिंग, 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बोथ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, दे वर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट, राइट? They've won all the matches. They have shown exceptional performance, according to me, with bat as well as bowl. Team India is looking in a great touch, as Indian bowlers Jasprit Bumrah and Kuldeep Yadav were already bowling very well. And now Akshar Patel's great spell against England in the semi-finals shows India's enhanced bowling attack. And as you were talking about skipper Rohit Sharma, he has also gained the momentum in last two matches, while Virat Kohli's continuous poor performance in the tournament is a matter of concern for the men in blue. And in Bridgetown, the battle of two unbeaten teams will decide the winner of this edition of ICC Men's T20 World Cup.
और आप बात कर लेते हैं करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए। आज मशहूर गणितज्ञ, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक दामोदर कोसाम्बी का निधन हुआ 1966 को। आज ही के दिन उन्होंने सांख्यिकी की बुनियाद पर बांध बनाने की वकालत की। उस दौर में ना शगुन मुंबई में मॉनसून से पहले की बीमारियों पर उनकी रिसर्च की वजह से हर साल करीब 500 लोगों की जान बचाई जा सकी।
ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन ही मेड।
बिल्कुल। ब्रिटिश वैज्ञानिक जेडी बर्नल को कोसाम्बी की वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ साथ विश्व शांति के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। कोसाम्बी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में गणित विभाग के वो प्रमुख बने। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बहुत ऊंची ग्रेड से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। वो लगातार इन की तमाम विधाओं से में महारत हासिल करने की कोशिश करते रहे। कोसाम्बी ने करीब 12,000 सिक्कों को तोलकर भारत में सिक्कों के वैज्ञानिक रिसर्च की बुनियाद रखी। कोसाम्बी सूरज की किरणों से बिजली बनाने के विकल्प अपनाने की जोर शोर से वकालत करते रहे।
And friends, today is the birth anniversary of Nicole Scherzinger, an American singer, songwriter, dancer, actress and a television personality. She is a former member of the pop group and dance ensemble The Pussycat Dolls. With only 2 albums and over 55 million records sold worldwide, this group, they are one of the best, world's best-selling female groups of all time. And we are going to listen to this particular song, which was composed by the Indian composer A.R. Rahman with this singer and their band, the Pussycat Dolls, which was recorded for the re-release of the group's second studio album, which is Doll Domination, in the year 2008. So let's listen to Jai Ho.
मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यन का निधन आज ही के दिन 2016 को हुआ। सुब्रमण्यन भारतीय आधुनिक कला के सबसे वरिष्ठ कलाकारों में से एक थे। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मणिदा लोक और पारंपरिक कला से प्रभावित थे, लेकिन क्यूबिज्म जैसी पश्चिमी शैलियों से भी थे और उनका मानना था कि लोक कला में एक तरह की गतिशीलता होती है। यूं तो बहुत इनकी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय हमारा दौड़ता है तो आप बताइए कि हम पीसी महल नोबिस की बात कर लेते हैं। देखो सांख्यिकी विद पीसी महल नोबिस का जन्म आज ही के दिन 1893 को हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी उन्हें पुरस्कार दिया। और इन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, फेल्डमैन महल नोबिस मॉडल भी बनाया, जो आर्थिक विकास का एक नव मार्क्सवादी मॉडल था। इसका उपयोग भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में किया गया, जिसने भारत में औद्योगिकरण और विकास का खाका तैयार किया।
He also founded the Indian Statistical Institute and contributed to the design of large-scale sample surveys. For his contributions, he has been considered the father of statistics in India. And friends, moving forward, today is the birth anniversary of Padmanabhan Krishnagopal Iyengar, an Indian nuclear physicist who is widely known for his central role in the development of the nuclear program of India. He previously served as a director of BARC and former chairman of the Atomic Energy Commission of India.
स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह का निधन आज ही के दिन 1961 को हुआ। आजादी के बाद एक तरफ वो सरदार पटेल के साथ कश्मीर में कबायलियों के बहाने पाकिस्तानी घुसपैठ से मुकाबला कर रहे थे और दूसरी तरफ वो सेना के जरिए देश भर में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश में लगे थे। और देखो, दोनों देशों की सेना और सामान को विभाजित करने और नया बुनियादी ढांचा और सैन्य व्यवस्था बनाने में बलदेव जी की बहुत भूमिका थी।
Right. Today is the death anniversary of Rose Clooney, a singer and actress. She came to prominence in the early 1950s with the song Come On, My House, which was followed by other pop numbers such as Watch Me, and you are listening in the background song Sway by her. Like the lazy ocean hugs the shore.
तो भाई शगुन, आज का परिक्रमा कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरी सहयोगी शगुन को। नमस्कार, नमस्कार।